ओम शांति। आदरणीय शीलू दीदी जी, भट्टी के पहले उद्घाटन सत्र में हमारे मध्य पधारे। हम सबसे पहले एक हाथ की ताली से मुस्कुराते हुए आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी, आपके आते ही यहाँ रूहानियत की खुशबू फैल गई। बाबा के प्यार की तरंगे सबको अनुभव होने लगी और एक तपस्या का सुंदर वातावरण जैसे बंध सा गया है, ऐसा अनुभव हो रहा है। दीदी जी ऐसी विशेष तपस्विनी आत्मा है जो साकार बाबा के समय, जबकि आप केवल 10 वर्ष की आयु के थे, तब से ही आपने भगवान को इस धरती पर अवतरित गुप्त रूप में भी हुए को पहचान लिया और 12 वर्ष की आयु में आप मधुबन पधारे और बाबा शायद बॉम्बे गए थे और आपने बाबा की गोद ली और कहते तब से ही मेरा दिव्य जन्म हो गया। इतनी छोटी आयु में ही बाबा को पहचान लेना और उस दिव्य जन्म को प्राप्त कर लेना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और दीदी जी ने BSc पूरी की और बाबा की जो आज थी, बाबा ने आपको पत्र में लिखा था खास कि रूहानी डॉक्टर चाहिए, बच्ची को ईश्वरीय सेवाओं में लगना है, तो उसके बाद आप ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित हुए। कई देशों में शुरू से ही आप सेवा करने जाते रहे, लेकिन आप एक अनोखा ऐसा अनमोल हीरा हैं जिसकी बाबा को यहाँ इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पर जरूरत थी, तो बाबा ने स्वयं अपने मुखारविंद से आपको वरदान दिया कि बच्ची आप हर की पौड़ी की गंगा हो। क्योंकि दीदी देश विदेश में सेवाओं के लिए जाते थे और तब बाबा ने कहा कि यहाँ मधुबन में आपको रहना है। जैसे हर की पौड़ी की गंगा होती है ना, तो बाकी स्थानों पर तो गंगा बहती है लेकिन हर की पौड़ी पर सब टुबकी लगाने आते है, तो मधुबन हर की पौड़ी है, जहाँ आदरणीय दीदी जी को बाबा ने खुद अपने मुख से कहकर रखा कि लाखों लाखों आत्माएं आएंगी पावन बनने और यहाँ आपकी बहुमूल्य सेवाएं चाहिए। दूसरा अव्यक्त बाप दादा द्वारा आपको डायरेक्ट वरदान प्राप्त हुआ कि आपके मुख पर सरस्वती विराजमान है और आपके द्वारा ही TV के द्वारा विशेष विहंग मार्ग की सेवाओं की शुरुआत हुई, जब GTV पर विशेष दीदी जी के प्रवचन आने शुरू हुए और चारों तरफ ब्रह्मा कुमारीज का पूरे वर्ल्ड में उसके द्वारा नामाचार हुआ और आज तो उसका विराट रूप सेवाओं का हम देख रहे हैं। तो दीदी जी एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, जो ऐसी कोई सेवा का क्षेत्र है नहीं जहां आपने अपने विशेष विशेषताओं का सहयोग न दिया हो। चाहे वो राजयोग शिविर हो, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो, चाहे वो भट्टिया हो, चाहे विदेश सेवा हो, चाहे लेखन कला हो, चाहे भाषण कला हो, चाहे विंग्स की सेवा हो, पॉलिटिकल विंग में भी आपकी सेवाओं का विशेष योगदान है, ग्लोबल ऑफिस भी आपका विशेष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करता है और मधुबन प्रांगण में तो आप अपनी खुशबू भी खेलते ही रहते हैं। आज हम सबके सामने आए हैं आदरणीय दीदी जी और हम सब की एक बहुत अंदर तक जो दबी हुई आश है कि हमारा अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए और हम निद्रा जीत बन जाएं बाप समान बनने के लिए, तो आए दीदी जी भट्टी के पहले सत्र में विशेष इस विषय पर हमको प्रकाश डालेंगे। एक बार फिर से
लक्ष्य और उद्देश्य, भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य,
भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य और उसके साथ अमृत वेला निद्रा जीत, दोनों बातें। तो भट्टी जो हम करेंगे आगे, तो उसका लक्ष्य निश्चित हो जाने से हमको बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, आराम से पटरी पर गाड़ी हमारी चलती रहेगी। तो आज
ओम शांति। आप सभी मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, परिवर्तन भूमि में प्यारे माता पिता, सभी दादियों के कर्म भूमि में पधारे हैं, तो सबकी तरफ से आप सभी का मधुबन में बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अपने लिए ताली बजाएं, क्यों न बजाएं अपने लिए। मधुबन ही ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मा बाप मम्मा ने, दादियों ने इतनी तपस्या की है। ब्रह्मा बाबा के चार धाम मधुबन में ही है। चाहे कितने भी अन्य स्थान बने, लेकिन ब्रह्मा बाबा के जो ओरिजिनल चार धाम वो तो यहाँ ही है। तो ऐसे स्थान पर आप योग भट्टी करने आए हैं, और जैसे ही आप पहुंचे होंगे, कई तो दो दिन पहले ही आ गए, दो तीन दिन पहले भी आ गए, तो आते ही आपको अकोमोडेशन मिलने से पहले ही आपके गले में एक विजय माला डाली गई, डाली गई ना। ये विजय माला मानो भट्टी का ठप्पा लगा आपको, जैसे ठप्पा लगता है ना, गवर्नमेंट की स्टैंप लगती है, माना एक तो पास हो गया, पास हो गया। अब इसके बाद डिलीवरी होगी, ऐसे होता है। तो बाबा ने आप सबको ये गले में विजय माला पहना दी, और क्या ठप्पा लगाया, क्या लिखा है आपके बैज पर, देखा आपने, अच्छी तरह से पढ़ा, क्या लिखा है, संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या भट्टी। तो सबसे पहला लक्ष्य इस भट्टी का यही है कि संस्कार परिवर्तन करना है। जो भी कड़े संस्कार हमारे अंदर हैं, वो इस भट्टी के अंदर परिवर्तन करने हैं। और कैसे परिवर्तन करेंगे, योग तपस्या के द्वारा भट्टी में पकेंगे, इसलिए संस्कार परिवर्तन योग तपस्या भट्टी, यही लिखा है ना। तो क्यों इसे भट्टी कहा, क्योंकि भट्टी में जो भी चीज पड़ती है वो परिवर्तित ही होकर बाहर निकलती है। ऐसे हो नहीं सकता कि अग्नि में कोई चीज पड़े और वैसे ही बाहर निकले। तो कैसी भी चीज है, उसके स्वरूप का परिवर्तन अवश्य होता है। कोई कठोर चीज डालते हैं, आलू बैंगन टमाटर थोड़े कठोर होते हैं, आग में डालते ही क्या हो जाता है, नरम हो जाते हैं। और कोई बहुत ही मुलायम चीज हो, वो अग्नि में डालो, जैसे मिट्टी की ईंट, वो डालो तो ईंट एकदम पक जाती है, लाल हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती, मजबूत हो जाती है। तो जो कठोर चीज है वो मुलायम हो जाती, और जो बहुत नरम चीज है वो मजबूत बन जाती है। कोयला डालो तो क्या बन जाता है, पहले तो लाल लाल हो जाता है, काला काला कोयला बदल के लाल हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो लाल खत्म होते होते राख बन जाता है। तक रूप रंग सब कुछ बदल जाता है। सोना डालो तो सोना खाद वाला होता है, पर जितना वो भट्ठे में पकता है सोना, उतनी उसकी खाद पिघलती जाती है, और पिघलते पिघलते सोना सच्चा एकदम 24 कैरेट बन जाता है, खाद पूरी निकल जाती है। तो कितना गिनाए, अग्नि की ये विशेषता है परिवर्तन। इसीलिए जब भी चाहे यज्ञ भी करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करके उसमें स्वाहा 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 करते हैं। तो हम भी इस यज्ञ में आए हैं, भट्ठी पकाई है, शुरू की है अभी पकाना, तो इस भट्ठी में स्वाहा 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 करते रहना है। क्या स्वाहा करना है? अपने पुराने संस्कार। तो आज ही नोट कर लेना, कौन से है हमारे पुराने संस्कार जो हम बहुत कोशिश करने पर भी नहीं मिटा पा रहे हैं, और वो संस्कार इस भट्ठी में खत्म करने हैं, स्वाहा कर देने हैं, फिर वापिस लौट के नहीं आए। वैसे तो बाबा अनेक युक्तियां बताते हैं कि कैसे इन संस्कारों को बदलो। बाबा अनेक युक्तियों में ये जरूर बताते हैं कि ये पुराने संस्कार आपके हैं ही नहीं, जो आपकी चीज ही नहीं है आप उसको मेरा संस्कार कैसे कहते हो? मेरा तो तब हो जब आपका हो, आपके तो कौन से संस्कार हैं? अनादि संस्कार, आदि संस्कार, वो तो कितने शुद्ध हैं, कितने पवित्र हैं। आदि संस्कार हमारे कौन से हैं? आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। तो आदि संस्कार भी है और अनादि संस्कार भी है। अनादि संस्कार जो हमारे असली गुणों पर आधारित है, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति कहते हैं ना, ये 7 मूल गुण, जिनके आधार पर ही हमारे अनादि संस्कार आधारित हैं। और इन्हीं संस्कारों को लेकर हम सतयुग में आते हैं तो वो हमारे आदि संस्कार बन जाते हैं, जो दैवी संस्कार कहलाते हैं, जो दिव्य गुणों की माला अपने शांति स्तंभ के सामने भी वो लिखी गई है, वो आपने पढ़ी होगी। ये सब हमारे आदि संस्कार हैं, जो अनादि संस्कारों पर आधारित ये दैवी गुण बन जाते हैं। तो अनादि और आदि संस्कार हमारे इतने ऊंचे हैं, तो ये जो पुराने संस्कार हम कहते हैं, बाबा कहते हैं ये द्वापर के बाद हुए, देह अभिमान पर आधारित। एक तो विकारों के वश संस्कार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, दुनिया में तो लोग यही कहते हैं ना, इनको जीतना बड़ा मुश्किल है। कई तो यहाँ तक कह देते हैं कि इनके बिना तो जीवन कैसे चलेगा, ये तो जरूरी है, गृहस्थी चलानी ये जरूरी है, धंधा करना ये जरूरी है, लोगों के बीच में रहना है तो ये जरूरी है। और बाबा क्या कहते हैं, ये जो विकारों व संस्कार हैं ये जरूरी है क्या? जरूरी है नहीं, हम इनके बिना बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो वो तो विकारी संस्कार जैसे ही बाबा के बने, तो वो जो काम क्रोध लोभ अहंकार जितने अशुद्ध संस्कार थे, वो तो देही अभिमानी बनते ही खत्म हो गए होंगे। अभी भी कोई है क्या जो कहेगा मुझे गुस्सा आता है? कई कहते ना गुस्सा आता है, गुस्सा अपने आप थोड़ी आता है, अपने आप आता है या हम करते हैं? अपने आप आता है या हम करते हैं? अपने आप आता है। अपने आप कहाँ से आएगा, कौन से दरवाजे से आता है? आता नहीं है, वो हम करते हैं। इसलिए हर वक्त कहा जाता ना, आपके सामने एक चॉइस है, आप जो चुने, चाहे उस परिस्थिति को शांति से झेले चाहे गुस्सा करे, आपके हाथ में है। तो अपने आप में आता है, परंतु शांति अपने आप अवश्य आ सकती है अगर ये संकल्प है कि मैं कौन हूं। पर दे अभिमान पर आधारित है हमारी स्थिति तो फिर विकारों के वश हो जाते हैं। तो वो तो अभी धीरे धीरे सब खत्म हो गए होंगे, योग की अग्नि में कुछ तो बदल गए होंगे। फिर कभी कभी बाबा कहते हैं पनपते हैं, थोड़ा आ जाते हैं या हम उसके वश हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते जो दूसरे हैं, उनके बाल बच्चे कई है, बाल बच्चे, तो वो बाल बच्चों को भी जीतना, जिसको बाबा कहते अंश, वो अंश भी न रहे, क्योंकि अंश होगा तो वंश आएगा, बाबा कहते हैं। तो इसीलिए वो अंश भी न रहे, वो यहाँ समाप्त करने आए हैं। और यहाँ से क्या बनकर जाएंगे, वो चित्र है ना अपना, मनुष्य रूप में आए और यज्ञ में स्वाहा किया और देवता बन के गए, है ना चित्र अपना, तो लक्ष्मी नारायण बन के गए। तो उद्देश्य तो हमारा बहुत ऊंचा है, उद्देश्य है मनुष्य से देवता, तो क्या देवताओं में भी जो विश्व महाराजन महारानी वो बनना है। हाथ उठाते ना, लक्ष्मी बनेंगे, नारायण बनेंगे, लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो इतना ऊंचा उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य क्या है, वो तो सत्युग में बनेंगे, पर संगम पर क्या बनेंगे? पहला उद्देश्य क्या है, बाप समान बनना है। आज भी बाबा ने कहा फॉलो फादर, कितना सहज है। कोई भी कार्य करो, कार्य करने से पहले या बोलने से पहले, सोचने से भी पहले, क्योंकि मन वचन कर्म होगा, तो उसके पहले क्या ब्रह्मा बाबा अगर इस समय होते तो ऐसे करते, ऐसे सोचते, ऐसे बोलते? तो अगर बाबा नहीं बोलते या सोचते या करते तो मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि बाप समान बनना है। तो बाबा कहते फॉलो करना कितना सहज है, आपको अपने अनुसार चलना है तो थोड़ी तकलीफ हो सकती, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन किसको कॉपी करना है तो बड़ा सहज है। संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा यहाँ कॉपी करने की छुट्टी है, स्कूलों में कॉपी नहीं करने देते, कॉपी किया तो फिर सजा है। यहाँ पर कॉपी करने की छुट्टी है, पर एक तो को कॉपी नहीं करना है, किसको कॉपी करना है? बाबा को, ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा तो निराकार है, उनको तो कॉपी उस रूप से तो नहीं कर सकते ना, पर हम देह में है, और ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां सब देह में थी, तो कैसे हम उनको कॉपी कर सकते हैं? तो कॉपी करना हमारे लिए अलाउड है। तो बाप, ब्रह्मा बाप को कॉपी करो, मम्मा को कॉपी करो, दादियों को कॉपी करो। पर एक दो को कॉपी करेंगे तो उनके अंदर जो संस्कार होंगे वो भी फिर आप में कॉपी हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते एक दो को नहीं देखो, बस फॉलो फादर एंड मदर, कई बार बाबा कहते तब उनके वारिस बन सकेंगे, उनके तख्त नशीन बन सकेंगे। तो हमारा सत्युग का उद्देश्य तो लक्ष्मी नारायण है, पर संगम के अंत में बाप समान बनना है। और उसके लिए भी क्या बनना होगा, फरिश्ता बनना होगा, क्योंकि बिना फरिश्ता बने भी बाप समान नहीं बनेंगे ना, ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने। तो फरिश्ता बने, उनका संपूर्ण स्वरूप
उनका आह्वान कर रहा था। अंत के समय जब बाबा ने देह त्यागा, उनका संपूर्ण स्वरूप उनका आह्वान कर रहा था, आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। और उसके पहले पुरुषार्थ बाबा ने खूब किया, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है। हमारे लिए तो बाबा है जिनको फॉलो करना है, ब्रह्मा बाबा के लिए तो कोई आदर्श था नहीं ना। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, विष्णु का हुआ, वो आदर्श था। फिर साथ में अपना भी संपूर्ण स्वरूप का उनको अनुभव हुआ कि मैं ये फरिश्ता बनूंगा, तो अपना संपूर्ण स्वरूप उनको दिखाई देता था और उस संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहते थे, ये बनना है, ये बनना है। तो ब्रह्मा बाबा के आगे कोई और सामने नहीं था उद्देश्य, जो उनको साक्षात्कार हुए वही उनका उद्देश्य था। पर हमारे आगे तो साकार में ब्रह्मा बाबा थे, इसलिए ब्रह्मा बाबा की कहानियां सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया। तो जो ब्रह्मा बाबा ने किया वो हमको करना है। तो बाप समान बनना माना, पहले फरिश्ता बनने का लक्ष्य रखना। तो जैसे ही ये उद्देश्य मिलता है तो उस अनुसार फिर लक्ष्य, वैसे बिजनेस के अंदर कहते हैं एक होते हैं शॉर्ट टर्म एम होता है, शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। तो लक्ष्य होता है छोटे छोटे, 6 मास में इतना कवर करना है, 1 साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है। और दूसरा होता है उद्देश्य, ये किस लिए करना है, वो उद्देश्य है। तो लक्ष्य है छोटे छोटे। तो यहां जब आप आए हो तो क्या लक्ष्य लेकर जाना है, संस्कार परिवर्तन का, क्योंकि उस उद्देश्य तक तब पहुंचेंगे जब पहले ये संस्कार बदलेंगे। तो शूद्र के संस्कार तो खत्म हो गए, अब ब्राह्मणों के भी संस्कार कितने ऊंचे हैं वो भी कोई कम थोड़ी है। देवताएं दैवी संस्कार, वो तो दैवी गुणों पर आधारित है, लेकिन ब्राह्मणों के भी संस्कार बहुत ऊंचे संस्कार, ब्रह्मा के संस्कार सो ब्राह्मणों के संस्कार है। तो जब ब्राह्मणों के संस्कार हम गिनते हैं तो ब्राह्मण तो चोटी है, हम कितने ऊंचे हैं। कई बार तो बाबा इतना नशा चढ़ाते हैं तुम देवताओं से भी ऊंचे हो, है ना, हम देवताओं से भी ऊंचे या देवताएं हमसे ऊंचे हैं। पहले तो हम सोचते थे हम कैसे देवता, देवता तो हमारे पूज्य हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले विष्णु का साक्षात्कार किया और विष्णु ने उनको वरदान दिया अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तो बाबा को आया मैं इन जैसे कैसे हूँ, मैं तो इनका दास हूँ, सेवक हूँ, भक्त हूँ, ये तो मेरे इष्ट हैं, मैं इन जैसे कैसे हूँ, तत्त्वम का वरदान मिला। तो ये थोड़ी पता था मैं ये बनने वाला हूँ, लेकिन अभी तो हम बच्चों को पता चला देवता बनना है, परंतु उसके पहले हम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं, देवताओं से भी हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भगवान के साथ है, देवताएं भगवान के साथ नहीं होंगे। तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का इतना पक्का निश्चय और फिर उसके साथ नशा, ये निश्चय और नशा कभी भी हमारा हिले नहीं, क्योंकि ये निश्चय और फिर नशा, बिना निश्चय के नशा भी नहीं चढ़ेगा, निश्चय है ही नहीं और ऐसे ही नशा चढ़ाव नहीं होगा, पहले निश्चय चाहिए, वो फाउंडेशन है, फिर उसका नशा दिखाई देता है, तब हम निशाने तक पहुंचेंगे। तो जब ये नशा निश्चय हमें होता है कि हम तो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के मुख संतान हैं, आदि रचना हैं, ये संगम युगी ब्राह्मणों की श्रेष्ठ के श्रेष्ठ संस्कार, इतने ऊंची निश्चय और नशे वाले संस्कार, यही हमें परिवर्तन करने की शक्ति देंगे। और उसके लिए सबसे सुंदर समय ये अनुभव करने का है, वो है अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त पर। जैसे हम ने आंखें खोली तो मानो बाबा सामने देखा। हम देवताओं से ऊंचे हैं, देवताएं बाबा को नहीं देखेंगे आंखें खोलेंगी तो। देवताओं की जब आंखें खुलेगी तो क्या देखेंगे? प्रकृति की सुंदरता देखेंगे या पक्षियों की चहचहाट सुनेंगे? वो ही जगाएंगे ना, पत्तों के पत्ते हिलेंगे तो उनका म्यूजिक होगा, वो जगाएंगे और उनका आनंद लेंगे। और हम किसका आनंद लेंगे पहले पहले? हाँ, बाबा का। तो उठते ही पहले बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु वो गुड मॉर्निंग तब होगा जब पहले रात को बाबा की गोद में गए, गुड नाइट करके गोद में गए और जैसे उसमें समा गए। और जैसे समा गए एक सेकंड में नींद आ जाएगी। अगर नींद नहीं आती है, बदलते रहते करवट, तो ये भी एक कड़ा हिसाब किताब है, क्यों नहीं नींद आती है। एक बार दादी जी से किसी ने पूछा, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि जी से, कि दादी आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतने आपके सेंटर्स हैं, इतनी सारी बहनें हैं, कितना आपको ध्यान रखना पड़ता होगा, कितनी बातें आती होगी सारे दिन में, तो जब आप बिस्तर पर जाते हैं आपको नींद आती है? दादी उसको देखने लग गई। दादी कहती, क्यों नहीं आती है, क्यों नहीं आती है? मैं तो बस बाबा के बिस्तर पर गई, बाबा बस मैं आपकी गोद में आ गई, छोटा बच्चा बन जाती हूँ, एक मिनट में नींद आ जाती है। तो व्यक्ति आश्चर्य खाने लगा, क्योंकि हम खुद देखते थे दादी को। रोज रात को दादी के कमरे में हम जाते थे और दादी उस समय मुरली पढ़ती होती थी, कमरे में मुरली पढ़ती होती थी, तो हम लोग पहुंच जाते थे। फिर दादी कहती, बैठो बैठो बैठो, मुरली सुनो। हाँ, तो जैसे दादी मुरली सुना रही है, और दादी मुरली सुना रही है, हम सुनते रहते। और फिर देखो दादी एकदम, फिर देखते थे कि फिर किसी और को देते थे मुरली सुनाने के लिए, तो वो मुरली सुनाती थी और दादी एक मिनट में बाबा की गोद में चली गई, गोद ऐसे नींद आ गई, इतना सहज था। तो दादी ने उनको और बहुत अच्छी बात कही, ये सब मैं थोड़ी कर रही हूँ, ये मेरा, मैं तो निमित्त हूँ, ये सारा इतना कारोबार, इतना एडमिनिस्ट्रेशन, क्या नहीं है यज्ञ इतना छोटा बड़ा, छोटा मोटा थोड़ी है। आज किसी को 5-6 दुकान हो या 6-8 बच्चे हो, सिर पर बोझ लगता है, और यहाँ इतने सेंटर्स, इतना बड़ा परिवार, और सब समाचार तो दादी को मिलता ही होगा, बहुत कुछ बातें होती होगी, लेकिन कैसे? दादी कहती थी, मैं थोड़ी कुछ करती हूँ, तो बाबा जाने, वो सेठ तो वो है ना, मैं थोड़ी सेठ वो है, सभी दुकानों का सेठ कौन है? तो शिव बाबा है। तो मैं तो केवल निमित्त हूँ, तो क्यों नहीं आएगी नींद? तो इसीलिए कई जो कंप्लेन करते हैं ना, अमृत वेले नहीं उठ सकते हैं, कई कारण बताते हैं, कुछ भी कारण वास्तव में कारण है नहीं। परंतु अगर हम रात को ये सोच के सोते हैं, बाबा की गोद में गुड नाइट किया, सब कुछ बाबा को सौंप दिया, जीरो बैलेंस कर दिया, ये नहीं कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, अकाउंट लिखते ना तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन के लिए, पर जीरो बैलेंस, क्योंकि बाकी जो भी पूंजी है सब बाबा को सौंप दी, सब कुछ बाबा तेरा, मेरा कुछ नहीं। खाली हो गए, दिमाग भी खाली तो सब कुछ खाली, बस न्यारे प्यारे होकर बाबा की गोद में सो गए। और बाबा को कह के सोना है, बाबा सवेरे 3 बजे उठाना और देखो बाबा कैसे खटिया हिलाता है। उसके पहले भी नहीं, जरूरी नहीं, क्योंकि बाबा ने भी उस दिन मुरली में कहा था कि 10 बजे सो जाने का, 10 से लेट नहीं करने का, क्योंकि 10 से 2 के बीच में वो समय ठीक नहीं है, जागना नहीं चाहिए, सो जाना चाहिए, पर हाँ 2 बजे के बाद उठो, क्योंकि कहा जाता है ना जब भोगी सोते हैं तब योगी जागते हैं, तो उस समय 2 बजे के बाद भोगियों के सोने का समय है पर योगियों के जागने का समय है। चलो 3 बजे उठो। और मधुबन में तो सुबह का समय बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ऊंचा है, बहुत मजा आता है, लेकिन उसके पहले नहीं। कई तो सोचते हम सारी रात बाबा के कमरे में बैठ जाए, बाबा मना करते, दादी मना करती थी, क्योंकि 11 बजे के बाद बाबा का कमरा ही बंद कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है, जाके सो जाओ, हाँ 2 बजे के बाद भले आओ। तो इसीलिए 10 से 2 बिल्कुल बाबा की याद में चले जाओ, हाँ बिस्तर पर चले जाओ और फिर बाबा की गोद में सो जाओ। लेकिन फिर जब सवेरे उठो, ऐसे नहीं कि निद्रा की स्थिति में उठो और एकदम झुटके खाते रहो और जबरदस्ती उठो, पर अच्छी नींद आ जाए, क्योंकि 4 घंटा भी बहुत है, कई समझ रहे 8 घंटा नींद चाहिए, तो ब्राह्मणों को कितने घंटे नींद चाहिए, मैक्सिमम चलो 5 घंटा, तो 2 नहीं तो 3, और 3 भी नहीं चलो 4, पर उससे तो ज्यादा नहीं ना। और यहाँ तो अमृत वेला बहुत ही पावरफुल होता है, सारी दुनिया की निगाहों से दूर है, वैसे भी दूर है, कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं है, न वायु प्रदूषण है, न ध्वनि प्रदूषण है, ना शहरों में तो क्या नहीं लगा पड़ा है, बात मत पूछो, सारा दिन पाँ 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 गाड़ियों के, और जो रेलवे के नजदीक रहते हैं, कई पटरियों के पास कई उनका मकान है, तो सारा दिन ट्रेनों की आवाज, रात को भी ट्रेनों की आवाज, क्या नहीं होता है। अगर किसके घर में बच्चे हैं तो बच्चों की आवाज, पता नहीं, मानो आवाजों की दुनिया में रहते हैं। और मधुबन आए तो एक तो आवाजों से भी परे, भले यहाँ सड़क है, बसें जाती है, सब बहुत कुछ आना जाना लगा पड़ा है, लेकिन फिर भी अंदर है तो इन बातों से दूर है। वहां तो पता नहीं साउंड पोल्यूशन इतना होता है, सामने वो टीवी चलती रहती है, आवाज होता रहता है, फिर खाने पीने का भी वो सुगंध आते, हम तो कई जगह जाते हैं ना, तो मीट भी पकता होगा, मछली भी पकती होगी, लहसुन प्याज, अब सेंटर पर भी उसकी सुगंध आती रहती है, दुर्गंध कहो आती रहती है। हम कहाँ गए थे, किसी स्थान पर सागर के किनारे था वो सेंटर, और बाप रे सारा दिन वो मछली की बदबू आती रहती, क्योंकि सागर मतलब मछली सूखती है ना, तो सागर सूखता है तो उसी की गंध आती थी। हम कहने का आप लोग सोते कैसे होंगे, फर्क तो पड़ता है ना। और देखो मधुबन में इन सब बातों से दूर है, तो बहुत ही भाग्यशाली हैं हम तो कहेंगे, पर आप यहाँ आए हो उस भाग्य का अनुभव करने कम से कम 4 दिन। अभी आप में से कई ऐसे भाई बहने होंगे जो पहली बार मधुबन में रह रहे हैं, वो हाथ उठाएं, जो पहली बार मधुबन में रह रहे हैं। अच्छा पहली बार, सॉरी पांडव भवन में रह रहे हैं, वो हाथ उठाएं। अच्छा, क्योंकि आते होंगे शांतिवन आते होंगे और यहाँ आकर के चार धाम की यात्रा करके चले जाते होंगे नीचे, पर यहाँ रहने का मौका नहीं मिला। तो कितने भाग्यशाली हैं आप। और ऐसे कौन है जो पहली बार मधुबन आए पहली बार है, वो हाथ उठाए, वो भी है क्या? अच्छा, आए पहली बार है, दो तीन चार दे हाथ उठा रहे। अच्छा, तो आप तो बहुत बहुत भाग्यशाली हो उनसे भी। तो आते ही भट्टी में आप रहे, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है, भाग्यशाली है। वैसे तो हम कहते हैं कि लिस्ट तो बहुत लंबी होगी जिनको भट्टी में आना है। हमारी बहनों को तो बहुत तो मुसीबत लगी होगी, किसको हाँ करे किसको ना करे। क्योंकि लिमिट है रहने की भी, यहाँ लिमिट है। तो परंतु लिस्ट में कईयों के नाम होंगे जिनको आना होगा, लेकिन लास्ट मिनट उनका कैंसिल हो गया होगा, और कईयों का नाम नहीं होगा और लास्ट मिनट ऐड हो गया। हाँ, ऐसा भी होगा ना। तो हम तो कहते चलो जो भी हुआ, पर यहाँ पहुंचे माना बहुत 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 भाग्यशाली हो, बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तो यहाँ पर बाबा के चार धामों का पूरा लाभ लेना, पूरा लाभ, क्योंकि आज भी जैसे बाबा ने कहा सर्व संबंध, बाबा सर्वेंट बन के आया है, बाप रूप में भी सर्वेंट, टीचर रूप में भी, सतगुरु रूप में भी, हर रूप से सर्वेंट माना सेवक, सेवा कर रहे हैं हमारी। तो हम बाबा से इतनी सेवा ले रहे हैं, तो क्या क्या सेवा बाबा ने की वो अनुभव आप बाबा के कमरों में कर सकते हैं, बाबा के स्थानों पर कर सकते हैं। वो अनुभव एक एक जो बाबा का धाम है ब्रह्मा, बाबा की यादगार का स्थान वहां कर सकते हैं। जैसे बाबा का कमरा देखो कितना सिंपल, कोई सोचे किसी गुरु का कमरा कैसा होना होगा, क्या आलीशान होगा, लेकिन बाबा का कमरा कितना सिंपल, बस एक खटिया पड़ी है, नीचे गद्दी पड़ी है, बस यही। बाबा साकार में भी बाबा कोई बहुत तामझाम कुछ नहीं रखते थे कमरे में, बस क्योंकि मिलना होता था बच्चों को, बाकी तो कुछ भी नहीं होता था। तो बाबा के कमरे में जाएंगे तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों से मिलते हैं, तो बाप का अनुभव करना है, बाबा कैसे बच्चों का सारा जो भी अंदर में बोझ था बाबा उठा लेते थे, हाँ सब कुछ खाली कर किया जाते थे बच्चे। तो बच्चा बाप के साथ जो संबंध रख सकता है उसमें पिता जिम्मेदारी बच्चे की ले लेता है। तो बस बाबा के सामने गए, बाबा को अपनी जिम्मेदारी सौंप दे, बच्चा बन जाओ, छोटा बच्चा बन जाओ बाबा के सामने। तो बच्चा बन जाएंगे तो बच जाएंगे सारे जो भी दुख दर्द सारी बातों से, बच जाएंगे, बच्चा बन जाओ बस। तो बाबा के कमरे में बच्चा बनने का बहुत सुंदर अनुभव कर सकते हो आप, और बच्चे के रूप में बाबा से शक्ति ले रहे हैं, बाबा बच्चों को शक्ति भरने की सेवा कर रहे हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का ट्रांसलाइट सामने देखते हैं, बाबा बच्चों को सकाश दे रहे हैं, बाबा ऐसे ही बैठते थे अंत तक, बाबा ऐसे ही बैठते थे, इसको अर्ध पद्मासन कहते हैं, ऐसे 93 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मा बाबा ने कभी लकड़ी नहीं उठाई, कभी कमर नहीं झुकी, सीधा चलते थे बाबा, कभी चश्मा नहीं लगाया, ये बाबा की विशेषता थी इतना, क्योंकि किसका रथ था आप सोचो, बाबा कहते थे लॉन्ग बूट है ये, लंबे लंबे तो थे ही 6 फीट तो थी बाबा की हाइट, लेकिन बाबा जब बैठते थे तो भी अनुभव होता था जैसे कोई राजा बैठे, राजा। तो हम भी जब बाबा के सामने बैठे तो इसी रूप में बैठे, ऐसे नहीं ऐसे करके, ऐसे नहीं, सीधा बैठे, और देखो बाबा की दृष्टि में देखेंगे, इतना सुंदर आपको अनुभव होगा जैसे बाबा आपसे बातें कर रहे हैं। तो तो बाबा आपसे बातें कर रहे हैं ये आपको अनुभव होगा, बहुत अनुभव अपना सुनाते हैं। तो बाप और बच्चे का संबंध बाबा के कमरे में जोड़ो, एकदम बच्चा बन जाओ और ऐसे हल्के होकर बैठो जैसे कि मेरा कुछ है ही नहीं, बोझ सारा बाबा को दे दिया। फिर हिस्ट्री हॉल में बाबा टीचर बन के बैठा है, टीचर बन करके हमको पढ़ा रहा है, वो संदली वही रखी है। कई कहते हैं हिस्ट्री हॉल में वो जो छोटा जो संदल रखा है ना, जहाँ बाबा मम्मा बैठते थे, इसको चेंज कर दो, सोफा रखो, ये रखो, वो रखो, लेकिन दादी कहती थी नहीं, ये ओरिजिनल है जहाँ बाबा हिस्ट्री हॉल में बैठते थे। क्योंकि आजकल लोगों को टेक चाहिए पीठ के लिए, तो समझते हैं कि हम योग कराएं तो पीछे टेक होनी चाहिए, जैसे ये बनाया है तो मेडिटेशन हॉल में तो बना लिया ये, लेकिन हिस्ट्री हॉल में नहीं बनाया है, क्योंकि वो ओरिजिनल है जहाँ बाबा मम्मा बैठते थे। तो ओरिजिनल बाबा का कमरा भी ओरिजिनल, खटिया भी वही है ओरिजिनल, वो गद्दी भी जहाँ बाबा बैठ करके बच्चों से नीचे बैठते थे ना, बाबा भले सोते थे वो पलंग है, लेकिन बाबा मिलते थे ग्रुप से तो नीचे गद्दी पर बैठ करके बाबा बच्चों से मिलते थे, वो भी वही है। तो हिस्ट्री हॉल में भी वही है। तो हिस्ट्री हॉल में जब बैठो तो उस समय क्या अनुभव करो, मैं एकदम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बन के बाबा की जो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं, तीनों लोकों का तीनों कालों का ज्ञान दे रहे हैं, त्रिकालदर्शी त्रिलोकी नाथ बना दिया है, स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया है, तीसरा नेत्र दे दिया है, तो हम कितने ऊंचे बन गए हैं। चारों अलंकार हमारे हैं, वो चित्र भी ना वही है बाबा के समय के। ये कई कहते ये भी चित्र हटाओ दूसरे बनाओ, कहते नहीं पुराने हो गए हैं, बहुत पुराने हो गए हैं वो चित्र, वो पेंटिंग है जो त्रिमूर्ति झाड़ गोला है ना, वो जो लगे हुए हैं हिस्ट्री हॉल में, वो पेंटिंग है। ऐसे नहीं कि कोई जैसे फ्लैक्स है या ऐसे लगा दिया, आजकल तो ये तो ये सब फ्लैक्स है ना ये बनाया, लेकिन वो ओरिजिनल पेंटिंग है। और पूरी लिखत भी जो आप देखेंगे ना, थोड़ा कभी ध्यान से वो आप पढ़ना, उसमें पहले बाबा ज्योतिर्लिंगम कहते थे, ज्योतिर्लिंगम शिव, ये तो बाद में चेंज हुआ ज्योतिर्बिंदु, लेकिन ज्योतिर्लिंगम शिव भगवानो वाच, शिव भगवानो वाच, तो शुरू में तो ज्योतिर्लिंगम ही कहते थे। तो कई कहते ना आप लोगों का ज्ञान बदल गया, आप पहले ऐसे कहते थे अभी ऐसे कहते हैं, लेकिन बदला नहीं है। तो बाबा उसका बताते हैं कि पहले से ज्योति बिंदु करते होते तो लोग समझते नहीं, क्योंकि ज्योतिर्लिंगम ही उनकी बुद्धि में आता है, शिव याद करेंगे तो ज्योतिर्लिंगम ही याद करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि बहुत वृद्धि हो गई है तो फिर धीरे धीरे जो ओरिजिनल फॉर्म है ज्योतिर्बिंदु तो वो बता सकते हैं, तो ओरिजिनल चित्र है। तो बाबा के सामने बैठे बाबा जैसे फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता ब्रह्मा बाबा फरिश्ता, उनका वो जो फोटो है ब्रह्मा बाबा का बीच में, एकदम फरिश्ते रूप में खड़ा है और हमें भी प्रेरणा दे रहा है कि अब ये पढ़ाई पढ़ के कर्मातीत बनो, संपूर्ण बनो, उड़ती कला का अनुभव करो, ये ज्ञान और योग हमें उड़ाते हैं। अभी चलती कला या ठहरती कला, वो चढ़ती कला नहीं, अभी उड़ती कला चाहिए, बहुत हाई स्पीड चाहिए। आजकल सब कुछ स्पीड स्पीड, हाँ तेज रफ्तार लोगों को बहुत पसंद है, तो ये हमारी पढ़ाई में भी ये तेज रफ्तार है। ज्ञान इतना रिफाइंड हो गया है, पहले इतनी समझ नहीं थी, और अभी जितना हम बाबा की मुरली जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ऐसे लगता है जैसे कि कोई और गहरी बात मिली, और गहरी बात मिली। कई समझते हैं पता वही वही तो है बाबा की बात, मुझे याद करो, हाँ स्वर्ग का वर्षा याद करो, नहीं, हर मुरली में कुछ ऐसी बातें होगी जो बिल्कुल एकदम दिल को छूने वाली, और उसके अनुसार अगर विचार सागर मंथन करेंगे सच्चा स्टूडेंट बन के, तो महसूस होगा कितना ऊंचा ज्ञान हमको बाबा ने दिया है। सभी वेदों शास्त्रों का सार है ये। ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इतना बाबा हमें ऊंचा ज्ञान देते हैं। तो हमारा टीचर है, किसी का टीचर कोई बहुत बड़ा आदमी होता है तो स्टूडेंट को भी कितना नशा होता है। मुझे याद है हम कहीं किसी से मिल रहे थे तो उसने पीएचडी की थी, तो उसने कहा मेरा जो प्रोफेसर था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो राष्ट्रपति बना ना, मालूम है ना, याद पता होगा। तो वो भी प्रोफेसर थे, डॉक्टर माना इन फिलोसॉफी, पीएचडी थे, और बहुत स्टूडेंट्स को उसने पढ़ाया था, उसके बाद ही वो राष्ट्रपति बना। लेकिन वो भाई ने इतना उसको नशा था कि मेरा जो प्रोफेसर था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। तो बताओ, एक मनुष्य बहुत अच्छे पद पर होता, वो प्रोफेसर मेरा बना तो कितना नशा चढ़ा। और हमारा प्रोफेसर कौन है? हमारा टीचर कौन है? ऊंचे से ऊंचा बाप। तो बाप टीचर, फिर आओ शांति स्तंभ पर, तो शांति स्तंभ भी देखो 69 में बना। 69 में ये सारा मार्बल जो लगा ये सब 69 का है, माना लगभग 50 साल होने को आए। कई थोड़ी वो शांति स्तंभ पर कुछ कुछ मार्बल के थोड़े दाग आ गए हैं, तो भी कितनों ने कहा सब बहन जी चेंज करो चेंज करो, दादी कह नहीं बिल्कुल नहीं चेंज करना है, वैसे कहा वैसा ही। आप लोग क्या समझते हैं, चेंज करना चाहिए या जो है जैसे वैसा ही होना चाहिए? तो दादी ने भी कहा नहीं, क्योंकि कई सोचते ना थोड़ा अच्छा होना चाहिए, दया होना चाहिए, ये होना चाहिए, यहाँ तक कहेंगे हम इसके लिए पैसा देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन दादी ने कहा नहीं ये भी नहीं। तो इसीलिए वो भी ओरिजिनली है, और ये भी साकार बाबा के देह माना संपूर्ण बनने के 6 महीने पहले से या 1 साल पहले से बाबा ने ये शब्द कहे थे, बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ बन करके चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं। जैसे प्रकाश स्तंभ होता है, लाइट हाउस होता है, वो चारों ओर लाइट फैलाता है, तो तुमको शांति स्तंभ बनना है, ज्ञान स्तंभ बनना है, शक्ति स्तंभ बनना है, पवित्रता स्तंभ बनना है। ये 4 स्तंभ ये साकार में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये महावाक्य उचारे थे, तो वो जो महावाक्य उचारे ये 4 स्तंभ बन गए हैं शांति स्तंभ के नाम से। तो ये उस 1 साल के अंदर, और यहाँ तक बाबा कहते थे बच्चे ये शरीर भी छूट जाएगा, ये सदा थोड़ी रहेगा, लेकिन तुम बच्चे सदा ये पढ़ाई पढ़ते रहोगे, बाबा तुम्हारे साथ है। क्योंकि हम समझते थे बाबा साथ है माना साकार में सदा साथ होगा, लेकिन ये थोड़ी पता था कि अव्यक्त मुरलियां इतना चलेगी, वो थोड़ी पता था। फिर साकार के बाद चलो फिर अव्यक्त मुरलियां चली, साकार को बाबा ने कभी रिवाइज करनी है, बहुत बच्चे आएंगे जो साकार मुरली से फिर जन्म लेंगे, तो वो भी हुआ। फिर अव्यक्त मुरलियां भी लगभग 49-49 वर्ष तो चली, अभी वो रिवाइज होनी शुरू हो गई। तो जब भी हम सुनते हैं कैसा लगता है, आप लोग क्या अनुभव करते हो वहां बैठे, लगते हो क्या ये कोई वीडियो चलाइए, क्या महसूस करते हो? आप देखते होंगे ना पीस ऑफ माइंड चैनल पर, ये सब अपने सेंटरों पर सभी देखते हैं ना, कोई नहीं भी देखते है क्या? हाँ सभी देखते हैं, तो क्या अनुभव करते हो उस समय? हाँ बिल्कुल, यहाँ भी हजारों बैठते हैं लेकिन ऐसे अनुभव करते हैं जैसे बिल्कुल बाबा सामने, और पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी कि टीवी देख रहे हैं पर पिन ड्रॉप साइलेंस, वो वाइब्रेशंस ऐसे ही अनुभव होते हैं। तो चाहे साकार मुरलियां चाहे अव्यक्त मुरलियां हम रिवाइज कर रहे हैं, परंतु वो अनुभव वैसा का वैसा ही है। तो जब हम शांति स्तंभ पर आते हैं तो तो शांति स्तंभ पर क्या महसूस करें, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां गलाई, सेवा में गलाई, अंत तक सेवा के, ये नहीं कि बीमार पड़े और बिस्तर पर रहे, अंत घड़ी तक बाबा ने सेवा की। रात्रि को क्लास कराया और रात्रि क्लास करा करके कमरे में गए और बच्चों से पहले हिस्ट्री हॉल में क्लास करा के छुट्टी ली, जैसे कि अभी छुट्टी नहीं तो छुट्टी बाबा कभी नहीं कहते थे, लेकिन बाबा ने उस दिन का छुट्टी, और फिर बाबा कमरे में गए और कैसे दादी जी उनके सामने थी और दृष्टि और हाथ ये विल कर दी दादी को, बोला कुछ नहीं और आत्मा उड़ गई, संपूर्ण बन गई। शिव बाबा ने अपने पास बुला लिया, संपूर्ण ब्रह्मा ने उनको आप समान बना दिया। तो कैसे संपन्न संपूर्ण बने, तो बाबा शांति स्तंभ पर हम अनुभव करते हैं बाबा को, कि बाबा ने ये जो महावाक्य उच्चारण किए, ये हम बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए महावाक्य उच्चारण किए, ये चारों स्तंभ उसके लिए। तो सतगुरु, सतगुरु रूप में बाबा को देखो, पावन बनना है, पवित्र जीवन, संपूर्ण पवित्र जीवन, संपूर्ण शांति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण शक्ति अनुभव करें और फिर बाबा की झोपड़ी में आओ। तो झोपड़ी में क्या अनुभव करेंगे, बाबा को सखा रूप में, बाबा सखा रूप में थे, बाबा से छोटी छोटी बातें भी करते थे, ऐसा नहीं खाली बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें बाबा से कई बातें करते थे, दिल की बातें, छोटी छोटी बातें भी, और अनुभव करते अभी भी बाबा के आगे पत्र लिखते हैं और बाबा की पेटी में डालते हैं, वहाँ लेटर बॉक्स, बाबा लेटर लिखते थे तो अभी भी बच्चे बाबा को लेटर लिखते, कई उसमें बातें लिखते होंगे और सचमुच वो अपना अनुभव सुनाते हैं भाई बहने, कि बाबा का जैसे जवाब आ गया, भले अगले दिन मुरली में आ गया या किसी के द्वारा मिला, लेकिन जवाब मिल गया, उन्होंने लेटर में लिखा परंतु जवाब बाबा ने उनको दे दिया, ऐसे उनको अनुभव होता है। तो बाबा की झोपड़ी माना, जैसे बाबा से सखा रूप में रूलियान कर रहे, दिल की बातें कर रहे, वन टू वन। बाप रूप में तो कई बच्चे इकट्ठे बैठे होते हैं तो बाबा ग्रुप से मिलते थे, पर झोपड़ी में तो बाबा वन टू वन मिलते थे, क्योंकि छोटी सी झोपड़ी, उस समय तो ऐसी झोपड़ी नहीं थी ये जब भी आप देख रहे हो, ये तो बाद में परमानेंट बनाई है। बाबा हर साल बनवाते थे खजूर के जो पेड़ है ना, यहाँ बहुत है माउंट आबू में, तो उनके ताजे ताजे पत्ते मंगवाते थे और वो ताजे पत्तों की हर साल गर्मी के दिनों में झोपड़ी बनाते थे ताजे। तो बाहर चाहे भले थोड़ी गर्मी लगे, लेकिन अंदर जाओ झोपड़ी में तो इतनी ठंडक महसूस होती थी, क्योंकि वो पत्ते फ्रेश फ्रेश पत्ते होते थे। तो बाबा बैठते थे दिन के समय 11 बजे बैठते थे, शाम को ही बैठते थे तो पत्र खास लिखते थे, वो जैसा फोटो आप देख रहे हैं ना, बाबा तकिए पर ऐसे करके बैठे और पत्र लिख रहे हैं, तो बाबा ऐसे पत्र लिखते थे और बच्चों से मिलते भी थे। तो हम भी ऐसे बाबा से मिले और जो भी दिल की बातें करनी है बाबा से करो और सचमुच आपको जवाब मिलेगा, अनुभव कहता है। जैसे बाबा वो टचिंग देते हैं, प्रेरणा मिलती है, लेकिन उस समय और कोई सोच न हो, बस सब सोच बाबा को दे दो, समर्पित कर दो। और अमृत वेले तो विशेष रूप से बुद्धि हमारी इतनी स्वच्छ साफ हो, शुद्ध हो, कि ऐसे अनुभव करे जैसे हम आत्मा फरिश्ता बन के उड़ रहे हैं, कोई देहधारी की याद न हो। हमारी बड़ी दीदी हमेशा कहती थी, सवेरे सवेरे उठते हो ना तो 5 केले खाओ। खाते खा सकते हैं 5 केले सवेरे सवेरे उठते ही 5 केले खाओ माना, हाँ किसको पता है, हाँ अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर अकेले को याद करना है। उठते ही कोई भी देहधारी हमारे मानस पटल पर न आए, किसी की भी देहधारी की याद न आए, मेरी युगल उठी होगी या नहीं उठी होगी, संकल्प आएगा क्या बहनों को? आएगा? पता नहीं मेरा पति उठा होगा या नहीं उठा होगा, पता नहीं आया या नहीं क्लास में, किसी को देखना नहीं है, क्योंकि बहनों का तो अलग होगा, भाइयों का अलग है ना, कि युगल युगल को रखा है, अलग है ना, सब अलग अलग है या साथ में है? अलग अलग है। तो अभी आपके युगल भी आए होंगे, आपके युगल आए होंगे, तो युगल को उठते याद करेंगे क्या? किसको याद करेंगे? हा? बाबा युगल है मेरा, शिव बाबा युगल है मेरा, वही मेरा सच्चा साथी है। तो इसीलिए उठते ही बाबा याद आए, कोई देहधारी याद ना आए, वो उठी होगी नहीं उठी होगी, उठा होगा नहीं उठा होगा, कहाँ होगा, सवेरे तो किसी को भी याद नहीं करना है, बस एक बाबा के सिवाय कोई देहधारी की याद ना हो, और बिल्कुल साइलेंस। देखो आपके भट्टी का नाम ही है मौन तपस्या भट्टी, कितना मौन में रह सकेंगे, समझते हैं मौन में रह सकेंगे? जो समझते हैं मौन में रह सकेंगे हाथ उठाओ। अच्छा, वाह तो बड़े बहादुर है भाई, मौन में रह सकेंगे, पर यो रोज याद दिलाना पड़ेगा अनीता बहन कि मौन में रहना है। अभी दूसरा कोई चलो जो भट्टी में नहीं है, कोई आवाज कर रहा है पर आप आवाज ना करें, अगर आपसे भी वो बात कर रहा है, जोर से भी कर रहा है, तो आप धीरे से, अगर देना भी है जवाब, धीरे से अगर बात करेंगे तो वो भी धीरे हो जाएगा। किसी को बोलना कुछ नहीं है, बस आप मौन में रहें, आप साइलेंस में रहें, और वो साइलेंस का वातावरण चारों ओर फैलाएं, और यहाँ करके जब बैठेंगे तो भी ऐसे उड़े, हाँ वतन में ऐसे उड़े, बस मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं, और बाबा और भी कोई ऐसी बातें नहीं करनी है, बस साइलेंस का ही अनुभव करना है। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल कोई शून्य बन जाते हैं, लेकिन बाबा की याद का इतना आनंद अनुभव हो जो और कुछ सोचने के लिए दिल ही ना हो। एक होता है ना सोचना नहीं है, दूसरा होता है दिल ही नहीं होती है कि कुछ सोचे भी, और कुछ जरूरत ही नहीं है, ऐसा अनुभव हम सबको करना है। करेंगे ना 3 दिन, और सुबह से लेकर रात्रि तक आपकी श्रवण शक्ति बहुत तेज चाहिए, क्योंकि पूरे स्टूडेंट बनेंगे, इतने सारे महारथी आपके क्लासेस कराएंगे, और वो अपना अपना अनुभव भी आप तक रखेंगे, जिन्होंने साकार बाबा मम्मा से ही पालना ली है या कई वर्षों का अनुभव है, तो वो अनुभव आप तक वो रखेंगे। तो इतना भरपूर होके जाना जो अमित छाप आपके जीवन पर ये भट्टी लगाए, और पूरा संस्कार परिवर्तित हो जाए। आए कैसे थे और जा कैसे रहे हैं, हाँ? इतना संपन्न संपूर्णता के निकट हम जाएं, जो वापिस आप जब जाएं तो लोग कहें अरे ये तो कितना बदल गया है, ये तो कितना बदल गई है, तो आप क्या कहेंगे? हम तो भट्टी में पक्के आए। तो भट्टी में पकना माना है परिवर्तन, तो ये परिवर्तन यहाँ से सदा के लिए करके ही जाना है, कोई भी पुराना संस्कार न रहे, ऐसी अमिट छाप अपने जीवन पर लगानी है। चलिए बहुत अच्छा, अभी हम सभी उसी स्वरूप में रहेंगे, और 10 मिनट 7:30 बजे तक वो अनुभव करेंगे, ठीक है? थोड़ी सी कमेंट्री दूंगी, सीधा बैठेंगे। एकदम एकाग्र हो जाइए। मेरे सर्व संबंध एक से है प्यारे शिव बाबा, जो मेरे सर्वस्व है, मात पिता, बंधु सखा, स्वामी सतगुरु, साजन, बच्चा, मेरे सब संबंध बाबा के साथ है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दे और दे की दुनिया से बिल्कुल उपराम, एकदम न्यारे। आप मुए मर गई दुनिया, मेरे लिए सारी दुनिया मर गई, मैं आत्मा भी इस दुनिया से मर गई, जीते जी मर गई, मेरा कुछ नहीं है, ये देह भी मेरी नहीं है, मैं आत्मा अति शुद्ध और पवित्र हूँ, उसी अनादि अविनाशी आदि स्वरूप का मुझे अनुभव करना है। मैं कितनी शुद्ध हूँ, एक दिव्य शक्ति हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, संपूर्ण स्वतंत्र, बिल्कुल निरसंकल्प, बस मैं और बाबा और कोई नहीं। मीठे बाबा, आपके साथ ही मेरे सर्व संबंध है, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आपके सानिध्य में मैं आत्मा कितनी भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, भरपूर हूँ, अति शुद्ध हूँ, बेदाग हीरा हूँ, सच्चा सोना हूँ।
आदरणीय दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। एक हाथ की ताली से मुस्कुराते हुए, दीदी जी जो आपने सिखाया हम जरूर जरूर ध्यान रखेंगे, अमृत वेला चार्ज होके बैठेंगे, एकदम मौन में मुस्कुराते मिलेंगे आपको। कोई भी भट्टी के बाद जब जाए तो ऐसे दीदी को दिखे कि ये तो बदल गए, सबकी शक्लें दिखेंगी कि ये पहले वाले नहीं रहे, ऐसा रिजल्ट भट्टी का जरूर दिखाएंगे और दीदी जी की और बाबा की आशाएं हम जरूर पूरी करेंगे। बहुत बहुत आभार दीदी जी का।
सच्चा सोना हूँ।
आदरणीय दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। एक हाथ की ताली से मुस्कुराते हुए, दीदी जी जो आपने सिखाया हम जरूर जरूर ध्यान रखेंगे, अमृत वेला चार्ज होके बैठेंगे, एकदम मौन में मुस्कुराते मिलेंगे आपको। कोई भी भट्टी के बाद जब जाए तो ऐसे दीदी को दिखे कि ये तो बदल गए, सबकी शक्लें दिखेंगी कि ये पहले वाले नहीं रहे, ऐसा रिजल्ट भट्टी का जरूर दिखाएंगे और दीदी जी की और बाबा की आशाएं हम जरूर पूरी करेंगे। बहुत बहुत आभार दीदी जी का। बहुत भाग्यशाली हैं हम सभी कि अभी हमारे बीच स्वयं आदरणीय शशि दीदी जी भी आपका स्वागत करने के लिए पधार रहे हैं। एक बात जरूर हम ध्यान में रखेंगे कि इस मौन तपस्या भट्टी में अपने मोबाइल्स को भी मौन करा देंगे। उनको घरों में सबको सूचना मिल गई होगी, आप ठीक ठाक पहुंच गए हैं, वापसी की डेट भी मालूम होगी, तो इसलिए इसको ऑफ पर रखेंगे। मिस्ड कॉल भी न चेक करनी पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़े, तो फोन अगर ऑन रहता है तो हमारा मौन जरूर तुड़वाता है, और न सिर्फ मौन तुड़वाता है लेकिन मन के संकल्पों को भी खींचने की इसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत कुछ है इसमें जो आपके संकल्पों को व्यर्थ की ओर ले जाए। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको मुरली फोन से पढ़नी है, वो तो यहाँ पर आपको मुरली मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि फोन द्वारा कोई गीत सुनने हैं, गीत तो यहाँ बजते हैं बाबा के घर में, कमेंट्री भी होती है, योग के लिए सब सहयोग मिल जाएगा। इसलिए इस डब्बी को 3 दिन आराम दे दो, नहीं तो आराम नहीं मिलता है इसको भी। तो भट्टी का ये भी एक नियम है कि हम मोबाइल यूज नहीं करें। इमरजेंसी किसी का कोई कारण है तो अपनी टीचर बहनों से परमिशन लेके फोन यूज करें, वरना नहीं करें, ताकि हमारे मन को खींचने के सब साधन सब दरवाजे बंद हो जाए और एक ही दरवाजा खुला रहे, बाबा और मैं। बस वतन का दरवाजा खुला है, दुनिया के सारे दरवाजे बंद है। चलते हुए या तो कहीं देखना नहीं, देखना है तो आत्मा को देखना है, बोलना तो है ही नहीं, काम कोई और करना नहीं है। दो ही काम है मधुबन में, एक क्लास दूसरा गिलास। कमरे से आओ क्लास तक, क्लास से जाओ भंडारे तक, भंडारे से आओ क्लास तक, फिर जाओ कमरे तक, विश्राम करो थोड़ा सा, वापस आ जाओ। और कहीं जाना नहीं, घूमना नहीं, कोई मार्केट नहीं। आदरणीय शशि दीदी जी हमारे बीच पधार चुके हैं, हम जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय दीदी जी का अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है दीदी जी। अभी मधुर वाणी ग्रुप ने इनका बहुत सुंदर गीत के द्वारा स्वागत किया, उससे पहले शीलू दीदी जी ने विशेष भट्टी का लक्ष्य दिया। और आप सबको मालूम हो कि आजकल आदरणीय शशि दीदी जी विशेष पांडव भवन की सेवाएं संभालते हैं। आप भी बाबा का ऐसा अनमोल हीरा है जिन्होंने साकार बाबा के समय से ही बाबा को पहचान करके अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित कर दिया। आप कुछ समय तक लौकिक जॉब करते थे, चंडीगढ़ और पंजाब की तरफ भी आप कुछ समय सेवाओं में रहे, और उसके बाद से हम जब से ज्ञान में आए हैं आपको मधुबन में, और यहाँ से ही देश विदेश की सेवाएं करते देखते हैं। खास जब विदेश के भाई बहने आते हैं तो शशि दीदी जी सबसे पहले उनसे मिलती हैं, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, सब तरह की ऑफिस की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना, देश विदेश में जाकर के सेवाएं करना। आप दादियों के भी अंग संग रहे हैं, बाबा मम्मा के भी संग रहे हैं, उस पालना का रंग आपको लगा है। और अभी पांडव भवन जो विशेष जादू का घर बनता जा रहा है, जिसको और कहीं अनुभव ना हो, पांडव भवन की धरनी खींच लेती है, उसको अनुभव कराती है। दीदी जी यहाँ की सेवाएं विशेष रूप से संभालते हैं, स्पोर्ट्स विंग की भी सेवाएं आप संभालते हैं। अभी विशेष अपने पवित्र वाणी के द्वारा पहले हम सबको उमंग में लाएंगे, उत्साह में लाएंगे, भट्टी की खुशियां याद दिलाएंगे, और फिर दीदी जी के हाथों से ही आज सबको टोली प्राप्त होगी। आदरणीय शशि दीदी जी।
ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि बाप दादा की विशेष चरित्र भूमि और वरदानी भूमि में अमरावती और अकोला सेवा केंद्र से संबंधित सभी भाई बहनों का बाप दादा, एडवांस पार्टी की दादियां, मम्मा, दीदी, दादी और एडवांस पार्टी के जो भी हैं और सर मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अमरावती और अकोला पहली बार ही पांडव भवन के अंदर भट्टी करने के लिए आए हैं। तो मैं जब देख रही थी कि अमरावती और अकोला के हैं, आप तो पहले से ही भट्टी में ही हैं, क्योंकि अमरावती मीन्स अमर बाबा की लगन में मगन रहने वाली सच्ची सच्ची पार्वतियां। भाई भी पार्वतियां हैं कि नहीं है? अमरावती वाले जो हैं सच्ची सच्ची पार्वतियां हैं, भाई भी पार्वतियां और बहनें भी पार्वतियां हैं। और अकोला वालों के लिए बाबा क्या कहते हैं, अकेला एक बाबा और दूसरा न कोई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो ये सब पक्का लेसन जब हो जाता है तो जैसे कि हम भट्टी में बैठे हैं। तो मधुबन की भट्टी में आना भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो आप सभी कौन हैं, सौभाग्यशाली हैं या पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं या भाग्यशाली, क्या कहेंगे? पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं। लेकिन हम आपको बताएं ये तीनों स्टेजेस में आने के लिए कैसे कैसे हम कदम उठाते हैं। जैसे ही बाबा कहते हैं, जैसे बाबा को पहचाना, बाबा कहते हैं, बाबा कहा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे, और हमने कहा कि मेरा बाबा, तो ये पहला कदम है हमारे भाग्य उदय होने का। क्योंकि बाबा कहते कोई भी बच्चा है, गरीब है, अमीर है, कैसा भी है, बुद्धि श्रेष्ठ है या कम बुद्धि है और किस भी तरह का है, लेकिन बाबा को पहचाना मीन्स उसके भाग्य का सूर्य उदय हो गया और उसका भाग्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। क्योंकि बाबा की गोद में आना एक बहुत बड़ा भाग्य की प्राप्ति। फिर जब हम बाबा के बन जाते हैं और बाबा की यादों में समा जाते हैं, बाबा को अपना बना लेते हैं, तो उस समय हमारा भाग्य जो है, हम भाग्यशाली, जिसको कहें सौभाग्यशाली बन जाते हैं, जिसको बाबा कहते हैं सदा सुहागिन है और सदा सौभाग्यशाली बन। क्योंकि जिसको बाबा बार बार कहते हैं मेरे बच्चे बनते हैं और मेरे बच्चे बन करके बाबा को अपना बना लेते हैं, बाबा के वर्षे के अधिकारी बनते हैं और बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, और संगम युग के अंदर बाबा हमको कौन सा वर्षा देता है, सर्व संबंधों का सुख मिलता। बाबा ही मेरा संसार है, हम बाबा के हैं, बाबा के साथ रह करके सर्व संबंधों के सुखों का अनुभव करते। तो संगम युग के अंदर हम प्राप्त करते हैं, सौभाग्यशाली बनते हैं और सौभाग्यवंती बनते हैं और सौभाग्यशाली बनते हैं क्योंकि बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते। तो इस भट्टी में आना मीन्स ही बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना। तो इस भट्टी में बाबा को अपना साथी बना करके बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए सबसे बड़ी बात यह, कभी भी हम ये कंप्लेंट नहीं करेंगे कि हमने बाबा को तो देखा नहीं, हमने तो मम्मा को देखा नहीं, हमने तो दादियों को देखा नहीं है। बाबा को देखा या नहीं देखा? जिन्होंने बाबा को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करें। बस दो चार हैं जिन्होंने बाबा को देखा वो हाथ खड़ा करे। सबने देखा ना है, कहीं ऐसे धीरे 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 उठाते हैं, सोचते हैं उठाए या ना उठाए। आपने बाबा को देखा या नहीं देखा? देखा है ना, फिर से हाथ खड़ा करो जिन्होंने बाबा को देखा है। ये देखो दो चार ऐसे भाई, ये बाबा को नहीं देखा है। अरे बाबा ने क्या बोला है, मैं बच्चों के साथ हूं, बच्चों को साथ लेके जाऊंगा, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक मेरे बच्चे हैं। तो बाबा तो साथ ही है ना, तो बाबा तो साथ है। बाबा ये थोड़ी कहते बाबा साथ है, बाबा देखता है बच्चे क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। कभी कभी आप देखेंगे बच्चे ढीले हो जाते तो बाबा आता है, बच्चों को हिलाता है, उठो बच्चे उठो, आओ बच्चे आओ, गोदी में आओ, चलो उठो पुरुषार्थ करो। बाबा बीच बीच में तो बच्चों को पुरुषार्थ करा ही रहा है, लेकिन क्या है हमारी बुद्धि इधर उधर भटकी हुई होती है ना, तो हम बाबा हमारे सामने खड़ा है वो हम अनुभव नहीं करते। साकार में बाबा क्या करते थे, जब बाबा के सामने बच्चे बैठे होते थे ना, बाबा हिस्ट्री हॉल में आते थे, मुरली चला रहे हैं तो बच्चे बैठे हुए हैं, तो बाबा देखते थे। दो बातों का बाबा को बहुत रहता था, अगर किसी ने भी बाबा सामने मुरली चला रहे इधर उधर देखा ना, तो बाबा कहते देखो माया की तरह बुद्धि जा रही। फिर दूसरा बाबा देखते थे किसी ने भी उबासी लिया, बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि क्लास में बैठे कोई भी सुस्ती करता या उबासी करता, तो बाबा कहते देखो माया आ गई, देखो देखो इनके पास माया आ गई। फिर बाबा क्या करते थे, जब क्लास में मुरली चल रही योग करा रहे हैं, बाबा खड़े होकर के एक के पास जाकर के दृष्टि देते, आ दृष्टि देते ही सारे बच्चे की जितनी क्लास में बैठे सब ध्यान में ट्रांस में चले जाते थे, बस मैं और बाबा। बाबा की लाइट इतनी जबरदस्त पड़ती थी, उस लाइट के अंदर वो समा जाते थे। तो ये भट्टी के अंदर भी वो अनुभव आपको होगा, लेकिन एक संकल्प को खत्म करना होगा कि हमने बाबा को नहीं देखा, लेकिन भट्टी में आप अनुभव करेंगे बाबा आपको सामने दृष्टि दे रहे हैं, बाबा आपके सामने खड़े हैं। ये भट्टी बाबा करा रहे हैं, ना कि कोई भाई बहने करा रहे हैं। भाई बहने तो निमित्त मात्र आपको क्लास कराएंगे, लेकिन बाबा कैसे ऊपर वतन से आकर के आपके ऊपर गोल्डन पुष्पों की वर्षा करेंगे और बाबा आपके सामने आकर आपको अनुभव कराएंगे। तो ये अनुभव आपको इस भट्टी के अंदर करना और इधर उधर नहीं देखना। इधर उधर देखा तो बाबा आपके सामने खड़े होंगे ना, तो बाबा जो वरदान दे रहे हैं वो वरदान आपको ना मिलके दूसरे को मिल जाएंगे। इसलिए आप सदा हर क्लास के अंदर ये ध्यान रखना है, बाबा के सामने है, बाबा की गोदी में है, बाबा अनुभव करा रहा है, बाबा मेरे को ऊपर ले जा रहा। तो एक तो ये अनुभव करना। दूसरी बात हम आपको बताएं कि आप जिस हॉल में भट्टी करने जा रहे हैं, इस हॉल की बहुत बड़ी विशेषता है, इस हॉल की डबल विशेषता है। पहली विशेषता है ये जो हॉल है ये पहले एक पहाड़ी थी, साकार बाबा के टाइम की ये पहाड़ी है। साकार बाबा यहाँ आकर के बैठ करके बहुत तपस्या करते थे और बाबा का एक चित्र आप हिस्ट्री हॉल में देखेंगे, ऐसे बाबा पहाड़ी पर बैठे हुए अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में हैं। तो वो जो अनुभव है वो बाबा ने इस पहाड़ी पर किया है। बाबा इस पहाड़ी पर बैठते थे और सब महारथी भाई बहनों को, दादियों को, विशेष महारथी भाइयों को बुलाते थे। बाबा कहते यहाँ सेमिनार करना। सेमिनार क्या करते थे कि योग का पुरुषार्थ, कैसे योग के अनुभव करने हैं। तो बाबा यहाँ पर बैठ करके सब दादियों को बुला करके विशेष योग की तपस्या करते थे। फिर कभी कभी बाबा यहाँ अकेले पहाड़ी पर खड़े हो जाते थे और आंगन में, पांडव भवन के आंगन में दादियां खड़ी हैं और गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे। बाबा ऊपर हैं और सब आंगन में खड़े हैं और गीत बजता है, बाबा कहते थे आओ बच्चे आओ, तो सब दौड़ दौड़ करके यहाँ आ जाते थे और यहाँ आकर के ऐसा बाबा अनुभव कराते थे जैसे कि सब सूक्ष्म वतन में उड़ते जा रहे उड़ते जा रहे। फिर बाबा कहते थे सूक्ष्म वतन से सारे विश्व के अंदर साकाश फैलाओ, योग के वाइब्रेशन फैलाओ। फिर बाबा कहते थे तुम बच्चे फरिश्ते बन जाओ। तो ये बाबा अनुभव कराते थे। तो भट्टी में ये सब अनुभव करने हैं। फिर क्या है, पहले तो ये पहाड़ी थी और इधर जो बाबा का बगीचा देखते हैं ना, वहां पर बाबा के अपने हाथ से बाबा ने अंगूर की बेल लगाई हुई थी और वो बेल भी पहाड़ी के कुछ हिस्से पर थे। फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त बाप दादा शुरू में बाबा के कमरे में आते थे, फिर अव्यक्त बाप दादा हिस्ट्री हॉल में आते थे। फिर एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ा ग्रुप आ गया तो अब कहाँ अव्यक्त बाप दादा आएंगे, तो अव्यक्त बाप दादा यहाँ पांडव भवन के आंगन में आए। बहनों को याद होगा है, हिस्ट्री बहुत बड़ी एक स्टेज बनाई थी और कुछ भाई बहने हिस्ट्री हॉल के छत पे, कोई हिस्ट्री हॉल के बाहर, कोई आंगन में, कोई इधर मेडिटेशन हॉल के बाहर जो पहाड़ी है और जो ऑफिस की छत है वहां बैठ गए। तो चारों तरफ ऐसा लगता था फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। तो फिर मीटिंग किया गया कि अब तो बहुत बच्चे आ रहे हैं, क्या किया जाए। तो फिर ये मेडिटेशन हॉल का निर्माण किया गया। तो मेडिटेशन हॉल 1975 में बनके तैयार हो गया। तो 75 से अव्यक्त बाप दादा यहाँ आने लगे। अव्यक्त बाप दादा यहाँ कॉर्नर में बैठते थे और सब बच्चे एकदम यहाँ बैठते थे। बाबा यहाँ उस समय कोई कुर्सी नहीं होती थी, एक कुर्सी सिर्फ रखी जाती थी बड़ी दीदी के लिए, क्योंकि बड़ी दीदी को थोड़ा सा टांग की तकलीफ। सब के सब ऐसे बैठते थे जैसे माँ बाप बैठे हैं और बच्चे सारे परिवार के परिवार बैठे। यहाँ कॉर्नर में बाबा है और सब की सब दादी और हम सब एकदम कॉर्नर में बैठते हैं। अभी तो बाबा कहते हैं ये स्कूल भी है, कॉलेज भी है और बच्चों के लिए विश्व विद्यालय भी है। तो विद्यालय है तो अभी तो बाबा ने सब सुख सुविधा के साधन दे दिए हैं। तो बाबा कहते बच्चे आराम से बैठे। तो ये मेडिटेशन हॉल साकार बाबा की तपस्या का हॉल है, अव्यक्त बाप दादा के वरदानी हॉल है। तो यहाँ पर आपके पास साकार बाबा भी आएंगे और अव्यक्त बाप दादा भी आपको वरदानों से भरपूर करेंगे। और दूसरी बात एक आपको बतानी है कि कई भाई बहने क्या करते हैं, मुरली क्लास के टाइम कहते बाबा की पहाड़ी पर जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल बाबा की पहाड़ी पर नहीं जाते हैं। अगर बाबा की पहाड़ी पर जाना तो ये बाबा की सच्ची पहाड़ी, वहां तो कभी कभी बाबा ले जाते थे बच्चों को। तो इसलिए टीचर बहने को ध्यान खिंचवाती हूँ कि मुरली क्लास के टाइम या दिन के टाइम किसी को भी बाबा की पहाड़ी पर उधर मत ले जाना। जिसको भी अनुभव करना है वो यहाँ पर बाबा की रियल पहाड़ी, ये पहाड़ी है। आप अभी हॉल में नहीं बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, पहाड़ी पर बैठे हैं। पहाड़ों पर बाबा कहते थे ना योगी तपस्या करते हैं, तो आप योगियों को तपस्या करने का मौका मिला है ये पहाड़ी पर बैठ करके। और रॉयल पहाड़ी बाबा ने आपके लिए बनवा दिए, हॉल बनवा दिया। तो ये पहाड़ी पर आप बैठे, इधर भी देखो पहाड़ी है, उधर भी देखो पहाड़ी है, चारों तरफ पहाड़ी है ना। तो इसलिए आप सबका बाबा के घर में ऐसी तपस्वी भूमि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत भी है। लेकिन स्वागत के साथ साथ एक बात और भी बतानी है। जब पांडव भवन में आते हैं ना तो पुराने भाई बहनों को देखते हैं, और आप सभी भी सेवा पर यहाँ बहुत आते रहे हैं तो पुराने भाई बहने मिलते हैं ना, तो उनसे मिलने के टाइम क्या करते हैं, सारा हालचाल पूछना शुरू कर देते हैं। आपका क्या चल रहा है, सेंटर पर क्या सेवा चल रही है, भाई बहनों का समाचार पूछते हैं। लेकिन भट्टी के समय ये समाचार के लेन देन को बाबा कहते स्वाहा, है ना, स्वाहा करना है ना। तो बाबा कहते वो बातें नहीं करनी है, कोई भी आपसे समाचार की बातचीत करे वो आप वो समाचार का लेन देन नहीं करना। और साथ साथ जो मोबाइल है, आप मोबाइल को क्या करेंगे, मोबाइल को क्या करेंगे, स्विच ऑफ, भट्ठी के टाइम पर स्विच ऑफ करो। हैं, बाद में कोई कारोबार जरूरी है, कोई ऐसा है, तब आप ऑन कर सकते हैं, लेकिन भट्ठी के टाइम पर आपका मोबाइल जो है स्विच ऑफ होना चाहिए। और साथ साथ बाबा भी हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे अभी आपको क्या करना है, उड़ते कला का अनुभव करना। तो बाबा ने एक दिन कहा, मुरली में बाबा कह रहे थे, बच्चों से पूछ रहे थे, अच्छा अभी आप बाबा को आसमान जितना प्यार करते हो या ब्रह्म तत्व जितना प्यार करते हो, अब क्या कहेंगे, हैं? दोनों ही करते हैं, आसमान जितना भी करते हो और ब्रह्म तत्व जितना भी करते हो, आसमान जैसा कैसे प्यार करते हो। अब इसका तरीका मैं बताती हूँ, भट्ठी में अनुभव करना। आसमान में जाने के लिए आज साइंटिस्ट ने क्या किया है, बड़े बड़े रॉकेट बना दिए हैं और ऐसे ऐसे साधन बना दिए हैं, उसमें बैठ करके आसमान की ओर जाते हैं या चंद्रमा की ओर जाते हैं या दूसरे ग्रह की ओर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अगर आसमान जितना प्यार करते हो तो रॉकेट का क्या करते हैं, बहुत लाइट, उसमें दुनिया की कोई भी चीजें नहीं ले जा, बहुत उनकी ड्रेस भी स्पेशल होती है और उनका जाना खाना भी स्पेशल होता है, सब कुछ स्पेशल होता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा, अगर जो बच्चे आसमान जितना प्यार करते हैं उनकी ड्रेस क्या होगी, एंजल की ड्रेस, बहुत लाइट, धरती के आकर्षण से दूर, जिसको बाबा कहते हैं देह के सर्व संबंधों से नष्ट मोह, देह के आकर्षण से दूर एक फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। जब फरिश्ते की लाइट ड्रेस होगी, मैं और मेरा बाबा, तब आप देखेंगे इस देह और देह की बातों से दूर होते जा रहे, हल्के होते जा रहे। तो जाकर के इस देह के सब संबंधों से दूर जैसे आसमान की ओर उड़े, फरिश्ते क्या आसमान की ओर उड़ते हैं, सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाते हैं। तो बाबा कहते इस भट्ठी के अंदर क्या करना है, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते हुए उड़ते रहना, तब आप अनुभव करेंगे आप इस धरती के अंदर नहीं है, आसमान की ओर है, फरिश्ते हैं, फरिश्ते सारे विश्व के अंदर उड़ रहे हैं, ऐसा अनुभव करें। अगर आप ब्रह्म तत्व जैसा बाबा को प्यार करते हैं तो ब्रह्म तत्व मीन्स बिल्कुल लाइट, तो वहां पर आत्माएं कैसी रहती हैं, बिंदु स्वरूप में, अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। तो भट्ठी में अगर आप ब्रह्म तत्व जितना भी बाबा को प्यार करते हैं तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा लाइट स्वरूप, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप के अंदर टिक जाएंगे तो बस बाबा और मैं लाइट ही लाइट, शक्ति ही शक्ति। तो ये ओरिजिनल स्वरूप का भी बाबा देखेंगे, कहां ब्रह्म महातत्व जितना बाबा को प्यार किया है, कहां आसमान जितना प्यार किया है, वो दोनों हमको इस भट्ठी में करना है, दोनों का अनुभव करना है। बाबा तो मुरली के अंदर ऐसी ऐसी बातें सुना देते हैं, हम सुन लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, लेकिन भट्ठी एक ऐसा साधन मिला है जो हमको उस स्वरूप का अनुभव करा दे। और फिर दूसरी बात हम आपको बताएं, बाबा कहते थे एक समय आएगा यहाँ पर लाइन लगेगी, अभी वो समय आ गया है कि बाबा के बच्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं, इतने बढ़ते जा रहे हैं, सबको शांति वन में रहने का मौका मिलता है और यहाँ पर आकर के चारों धाम की यात्रा कैसे करते हैं, जैसे भगत ना लाइन लगाते, दौड़ते जाते, जल्दी करो करते हैं ना, ऐसे लाइन लगाए और चक्कर लगाए चल पड़ते। लेकिन भट्ठी में आते हैं तो चारों धाम का विशेष अनुभव करने का मौका मिलता है। बाबा के कमरे में जाओ तो क्या अनुभव करेंगे? बाबा कहते सब चिंताएं छोड़ दो, सब कंप्लेंट छोड़ दो। बाबा क्या कहते, मैं बैठा मेरे पास साल बाबा की गोदी में बैठ जाओ। फिर जाएंगे झोपड़ी में, जाएंगे तो बाबा को पत्र लिखते थे ना, तो बाबा झोपड़ी में आते थे, बच्चे मिलते थे, बाबा के पास आते थे। कोई भी संकल्प होता था ना, आज बाबा से हम ये प्रश्न पूछेंगे, बाबा को देखा सब भूल जाते थे। बाबा कहते थे अच्छा बच्चे कुछ कहना है? नहीं बाबा कुछ नहीं कहना। बाबा कहते याद करो कोई बात के? नहीं बाबा सब बातों का जवाब मिल गया, सब कुछ मिल गया। बाबा को देखा सब कुछ भूल जाते थे। अरे झोपड़ी में गए सब संकल्प स्वाहा, बाबा के कमरे में गए बाबा के खुशियों के झूले में झूलो। फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ, बाबा हमारा कौन है? हमारा टीचर है, और टीचर हमको पढ़ा रहा है, टीचर हमको उड़ा रहा है, वो अनुभव करना है। और जब शांति स्तंभ पर जाए तो बाबा तो जैसे कि अंगद की तरह खड़ा, कुछ भी हो जाए, कोई माया का कोई भी तूफान बुद्धि को हिलाने के लिए आए हिला नहीं सकता है। वो शांति स्तंभ में याद कराता है कि लाइट शु बनो, माइट शु बनो, अपनी पवित्रता को याद करो, अपनी शक्तियों को याद करो। तो चारों धाम की यात्रा करने का इतना सुंदर मौका मिलता है, ये मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो उस अनुभव को करना है, इधर उधर नहीं करना है। फिर कभी कभी क्या करते हैं, आंगन में बैठते ना थल्ले पे बैठ जाते हैं, जोर जोर से बात ही करते हैं, जोर जोर से बातें नहीं करनी है। अब आपको बताओ ये आंगन की विशेषता, साकार में बाबा यही मई जून का महीना था, हम भी यहाँ पर आए थे, बाबा के पास रहने का मौका मिला। तो अमृत वेले योग के बाद बाबा और दादियां होती थी, वरिष्ठ भाई बहने होते थे, बाबा आंगन में खड़े हो जाते थे, खड़े होकर के सबको दृष्टि के द्वारा वरदान देते थे। फिर उसके बाद बाबा ये ऑफिस की सीढ़ियों के पास खड़े हो जाते थे। बाबा कहते थे सारे विश्व के अंदर फैल जाओ, जाओ वहां साकाश दो, विश्व की आत्माओं को साकाश दो। अब विश्व क्या है भारत ही नहीं देखा विश्व क्या है, लेकिन बाबा ने शुरू किया था। आप सभी बाबा के साकाश की रचना हो, आपको बाबा ने साकाश दिया। अमरावती अकोला में इतने बड़े बड़े सेंटर ऐसे नहीं खुले हैं, बाबा ने साकाश भेजा। अभी देखो तो कितने भाई बहने खुलते ही जा रहे, खुलते ही जा रहे। ये कौन खोल रहा है? बाबा खोल रहा है, बाबा जो प्रेरणा दे के कर रहा है, बाबा ने काम किया है। तो आप सबको बाबा ने पैदा किया है, किसके द्वारा पैदा कराया है? सीता दीदी और रुक्मणी दीदी के द्वारा और दीदियों के द्वारा पैदा तो करा है, लेकिन कराया किसने? बाबा ने किया ना। तो आप सब कौन हो? बाबा की रचना हो। अभी भी देखते बढ़ते जा रहे सेंटर बड़े से होते जा रहे हैं। तो बाबा फिर क्या करते थे, फिर उधर हमारे ऑफिस के बाहर आके खड़े हो जाते थे, और वहां पर बहुत सुंदर एक पहाड़ी है, वो भी पहाड़ी है। बाबा उस पहाड़ी पर खड़े होकर के कहते थे बाबा चलो फरिश्ते ऊपर उड़ो, सारे विश्व के अंदर चक्कर लगाओ। फिर बाबा पांडवन के गेट के बाहर आते थे, थोड़ा सांप को बाहर लेके कहते फरिश्ते कैसे चलते वो चलो। तो ये बाबा ने जो अनुभव किए कराए वो बच्चों को कराने के लिए इस भट्टी में बुलाया है। तो इसलिए जितना हो सके वहां धीमे साइलेंस में रहो, धीरे धीरे चलो, दौड़ो नहीं, आवाज नहीं करो, जितना आपको खजाने भरने भरपूर करो, लेकिन ध्यान रखना इधर उधर की बातों में आके अपनी झोली में छेद मत कर देना। बाबा ऊपर से वरदान देते जाए, वरदान भरपूर होते जाए, और धीरे धीरे कोई दूसरे के पास ना चले जाए, अपना खजाना अपने पास। इसमें इस भट्टी के अंदर ये भल लालच करो, खूब खजाने जमा करो, खूब जमा करो, जितना करना करो। तो आप सबका स्वागत है, और फिर जब बाबा से दादी से मिलने आते थे ना, हमें याद आता है जब दादी कभी कभी बाबा आंगन में खड़े होते थे, बच्चे आए हैं, बाबा कहते आओ बच्चे वेलकम, कभी कभी दादी खड़ी होती थी, मिलते थे, फिर हम उनसे पूछते थे बाबा से मिले दादी से मिले, कहते नहीं मिले। अरे कहाँ, अब भी तो मिले दादी से, दादी ने आपका स्वागत, कहते टोली कहाँ खाई है, मिले जरूर है टोली कहाँ खाई, मिलना मिस टोली खाना, ऐसे ना, जब तक टोली नहीं मिलेगी ना तब तक कहेंगे अब मिले ही नहीं है। तो ये बाबा अपने बच्चों को बहुत प्यार से स्वागत के साथ साथ फिर बाबा के पास आते थे, बाबा बच्चों को बहुत प्यार से टोली खिलाते थे, दादियों के पास भी आते थे तो दादियां भी वो टोली खिलाती थी। और अभी भी सिस्टम है, जब आते हैं शांतिवन में आते ना, पहले मिलेंगे फिर सबको टोली मिलेगी। तो बट्टी की शुरुआत भी बाबा क्या करते थे, बच्चों का मुख मीठा कराते थे। तो अभी आप सबका भी बाबा की तरफ से दादियों की तरफ से आप सबके स्वागत में आप सबको मुख मीठा कराया जाएगा। अच्छा, सब ठीक है, आराम से है, कोई को तकलीफ तो नहीं? अरे तकलीफ क्या होगी, बाबा के घर रहने को मिला और क्या चाहिए है? और क्या चाहिए। अब ये जाते ना तीर्थों पर, भगत जाते जम्मू कश्मीर जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते देखो तो सड़कों पर सोए पड़े, किसको सोने की जगह नहीं, उधर बैठे कोई, कहाँ बैठे नहीं है, रास्ते में कैसे कैसे रहे होते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं क्या बना दिया बाबा ने आपको, है पटरानी बना दिया, पट पे नहीं सुलाया, खट राजा खट रानी है, भविष्य में क्या राज तिलक मिलेगा। तो बाबा कहते यहाँ पर भी बच्चे आराम से रहें। साकार में भी बाबा देखते थे मेरे घर में बच्चे, अपने घर में बच्चे आए हैं आराम से रहें, बाबा बहुत ध्यान रखते थे उनके रहने का खाने का। तो आपका बाबा पूरी तरह से खातरी करेंगे, बट्टी तो नाम है लेकिन बाबा के साथ के अनुभव होते हैं। और बाबा इतनी खातरी करते हैं, खातरी में स्थूल भी और सूक्ष्म भी, सूक्ष्म भी बहुत खातरी और स्थूल भी आपकी बहुत खातरी होती है। अच्छा, अभी आप सबको मुख मीठा कराया जाएगा, सब ठीक है ना, आराम से, हाँ बोलो हाँ जी हैं।